का था, रूह वही रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि विक्रम के खान की मौत के बाद उसके घर से एक न्यूड पेंटिंग बरामद हुई। वहीं दूसरी ओर सार्जेंट सलीम शेक्सपियर कैफे में रक्सीना से मिला। क्या रक्सीना का इस पूरे हादसे से कोई ताल्लुक है? क्या हुआ उस न्यूड पेंटिंग का, क्या हुआ शयाली के बॉडी डबल का, और क्या हुआ श्रेया का हश्र? ये सब जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर का ये भाग। लड़की की चीख के साथ उसके हाथ से टॉर्च छूट कर गिर गई थी। गिरने की वजह से टॉर्च जल उठी। नकाबपोश ने तुरंत ही एक हाथ से लड़की का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से टॉर्च बुझा दी। बंगले के अंदर से लड़की के गिरने की धमक, चीख और रोशनी के जलने और तुरंत बुझ जाने का ये दृश्य बाहर से बहुत रहस्यमय लगा था। दरअसल बाहर पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। धमक की आवाज के साथ ही उनकी निगाहें बंगले की तरफ उठी थी। उन्होंने कॉरिडोर के शीशे से रोशनी भी देखी थी और एक साया भी, जो तेजी से नीचे झुक गया था। इस दृश्य के बाद कुछ कांस्टेबल भूत भूत चिल्लाने लगे, लेकिन तुरंत ही एसआई ने उन्हें डपट दिया और वो तेजी से गेट खोलकर लॉन की तरफ आया। डरते दुबकते कुछ कांस्टेबल भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुए। एसआई ने जेब से टॉर्च निकालकर कॉरिडोर के शीशे पर मारी और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है अंदर? अंदर नकाबपोश ने लड़की को पीठ पर लाद लिया और लेटे ही लेटे धीरे धीरे पीछे के हिस्से में सरकने लगा। कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचने के बाद वो खड़ा हो गया और तेजी से पीछे की तरफ भागा। लड़की अभी भी उसकी पीठ पर लदी हुई थी। वो शायद डर गई थी क्योंकि उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। नकाबपोश लड़की को लिए हुए पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। अभी वो कुछ ही सरक पाया था कि वजन ही की वजह से पाइप का ज्वाइंट खुल गया और वो दोनों नीचे आ रहे। इस बार गिरने की दो बार धमक शांत माहौल में गूंजी और लड़की के चीखने की आवाज भी। कुछ भागते हुए कदमों की आवाज पीछे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। ये पुलिस वाले थे। सन्नाटे में लड़की की चीख की आवाज पुलिस वालों ने साफ सुनी थी। यही वजह थी कि वो अंदाजे के मुताबिक बंगले के पीछे की तरफ आ रहे थे। नकाबपोश बहुत फुर्तीला साबित हुआ। वो न सिर्फ तुरंत ही उठ खड़ा हुआ था, बल्कि लड़की को पीठ पर लादकर तेजी से पीछे की दीवार की तरफ भागा। उसने किसी नट की तरह भागते हुए एक पैर दीवार पर टिकाया और हाथों को दीवार पर जमाकर तेजी से ऊपर चढ़ गया। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। नकाबपोश लड़की को लेकर तुरंत ही दूसरी तरफ कूद गया। जब पुलिस वाले पीछे के हिस्से में पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। एसआई ने टॉर्च की रोशनी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह मारी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दीवार के उस तरफ नकाबपोश लड़की को थामे एक मोटे से पेड़ की आड़ में दम साधे खड़ा था। उसने कुछ देर बाद बाहर झांक कर देखा। पीछे के हिस्से में रोशनी का दायरा इधर उधर मंडरा रहा था। अचानक उसे पीछे की दीवार पर एक सर नजर आया। उसने खतरा भांप लिया था। वो तेजी से आगे की तरफ सरकने लगा। कुछ दूर निकल जाने के बाद वो तेजी से भागने लगा। लड़की सहमी सी उसकी पीठ पर लदी हुई थी। उसने मजबूती से उसे पकड़ रखा था। काफी दूर पहुंचने के बाद नकाबपोश रुक गया। उसने पेड़ों के झुरमुट के बीच खड़ी कार की पिछली सीट पर लड़की को बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद नकाबपोश ने पीछे मुड़े बिना कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पीछे बैठी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आंखें फाड़े अंधेरे में देख रही थी। मैं जान सकता हूं कि आप इतनी रात को चोरों की तरह बंगले में क्या करने गई थीं? ये बात आप पर भी तो लागू होती है, लड़की ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया। ओह, हाशना? नकाबपोश के मुंह से अपना नाम सुनकर लड़की चौंक पड़ी। वो विस्मय से नकाबपोश की तरफ देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो?
पहले मेरे सवाल का जवाब।
मैं ना बताऊं तो
फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा,
क्योंकि किसी के घर में बिना इजाजत घुसना कानूनन जुर्म है। यह अपराध तुमने भी तो किया है मिस्टर, मैं पुलिस वाला हूं।
पुलिस वाले नकाब पहनकर घूम रहे हैं?
अजीब बात है, हाशना ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा।
चलो मैं ही बता देता हूं कि तुम वहां क्या करने गई थी।
हाशना ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद नकाबपोश ने कहा,
तुम वहां पेंटिंग की तलाश में गई थी, न्यूड पेंटिंग की।
कौन हो तुम? हाशना पहली बार बुरी तरह सहम गई। सार्जेंट सलीम शेक्सपियर कैफे से सीधे गुलमोहर विला पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मनीष को वहीं बुलाया था। सार्जेंट सलीम के पहुंचने के कुछ देर बाद ही मनीष भी पहुंच गया। सलीम लॉन में ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मनीष ने जीप लॉन से कुछ पहले ही रोक दी थी। उसके साथ एक कांस्टेबल हाथ में पेंटिंग लिए नीचे उतर आया। उसके पहुंचने पर सलीम ने कहा, आइए आइए अंदर ही चलते हैं, यहां कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा, लेट्स गो। तीनों वहां से ड्राइंग रूम में पहुंच गए। सलीम ने मनीष और कांस्टेबल को सोफे पर बैठाने के बाद बेल का बटन दबाया। एक नौकर कुछ देर बाद अंदर आया। सलीम ने उससे सोहराब के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं लौटा है। सलीम ने नौकर से तीन कॉफी और नाश्ता लाने के लिए कहा। क्या मामला है इस पेंटिंग का? सलीम ने मनीष से पूछा। जवाब में मनीष ने विक्रम खान के स्टूडियो की पूरी दास्तान उसे शुरू से आखिर तक सुना दी। इसमें यह जिक्र भी शामिल था कि एक बार स्टूडियो में चोरी के अंदेशे में विक्रम खान ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। क्या यह बात सोहराब साहब को मालूम है?
शायद नहीं, मनीष ने संक्षिप्त उत्तर दिया।
वो पिछले दिनों कई बार एक पेंटिंग का जिक्र कर चुके हैं, उनकी इसमें खासी दिलचस्पी है। हो सकता है कि ये वही पेंटिंग हो। जरा मुझे पेंटिंग तो दिखाना, सलीम ने कहा। कांस्टेबल ने चादर खोलकर पेंटिंग का रुख सलीम की तरफ कर दिया। सलीम पेंटिंग को एक टक देखता रह गया। काफी खूबसूरत पेंटिंग थी।
शियाली के मामले में आप लोगों की तफ्तीश कहां तक पहुंची? मनीष ने पूछा।
इस मामले में तो सोहराब साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, सलीम ने बुरा सा मुंह बनाया। मनीष समझ गया कि इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने हमेशा की तरह इस बार भी चुप्पी साध रखी होगी। दरअसल ये सोहराब की आदत थी कि जब तक किसी केस की तह तक ना पहुंच जाए वो उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। सलीम को भी वो उतना ही बताता था जितना उससे काम लेना होता था। नौकर कॉफी लेकर आ गया। सार्जेंट सलीम ने कॉफी बनाकर पहला कप कांस्टेबल को दिया। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि पद में छोटे लोगों को यह एहसास न करवाया जाए कि उनकी अहमियत कम है। कॉफी पीकर कुछ देर बाद मनीष और कांस्टेबल चले गए। सलीम पेंटिंग लेकर लाइब्रेरी में आ गया। वहां उसने पेंटिंग को मेज पर रख दिया। उसके बाद लैपटॉप ऑन करके ऑफिस की मेल्स चेक करने लगा। बालों की डीएनए रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दो बाल एक लड़की के थे और दो बाल दूसरी किसी लड़की के। बिल्ली की लाश के पास मिले रूमाल का बाल हाशना के सर से तोड़े गए बाल से मैच कर रहा था। वहीं पेड़ और अलमारी पर मिला बाल किसी दूसरी लड़की का था। यानी मामला साफ था कि विक्रम खान की खुदकुशी वाले दिन हाशना तहखाने में नहीं गई थी। अब अहम सवाल यह था कि वो लड़की कौन है जिसका ये बाल था। सार्जेंट सलीम कुछ देर तक बैठा सर धुनता रहा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वजह यह थी कि उसके पास ज्यादा जानकारी ही नहीं थी इस केस के बारे में। वैसे भी उसने एक लंबा वक्फा जंगल में श्रेया के साथ गुजारा था। श्रेया का ख्याल आते ही वो बेचैन हो उठा। जब से वो अपने घर गई थी उसने एक बार भी उसका हाल नहीं लिया था, जबकि इंस्पेक्टर सोहराब ने इसके लिए उसे खास तौर से ताकीद की थी। उसने तय किया कि वो कल सुबह ही सबसे पहले श्रेया से ही मिलने जाएगा। सार्जेंट सलीम लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। उसने इंस्पेक्टर सोहराब को फोन मिलाया लेकिन वो नॉट रीचेबल था। सलीम डाइनिंग रूम में आ गया और नौकर से खाना लगाने के लिए कहा। आज उसने काफी भागदौड़ की थी। उसका इरादा जल्दी खाना खाकर सो जाने का था। उसने हल्का फुल्का खाना खाया और अपने रूम में जाकर कपड़े बदले और बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे। सलीम को ऐसा लगा था कि जैसे भूचाल आ गया हो। नींद में पहले तो उसे तेज तेज पुकारे जाने की आवाज सुनाई दी, फिर उसे झिंझोड़ कर बैठा दिया गया। वो हमरनकों की तरह बैठा इधर उधर देख रहा था, तभी उसके कानों में फिर से सोहराब की आवाज गूंजी,
चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुरंत ही यहां से निकलना है।
कहां चलना है?
शोलागढ़, श्रेया की जान को खतरा है।
श्रेया का नाम सुनते ही सार्जेंट सलीम की आंखों से नींद गायब हो गई। वो तेजी से बिस्तर पर उठ बैठा और वॉशरूम में घुस गया। जब वो बाहर निकला तो सोहराब वहां नहीं था। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में सोहराब उसका इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक कॉफी का एक कप सलीम को पकड़ाते हुए कहा,
इसे पी लो, नींद और थकान दोनों ही गायब हो जाएंगी।
कॉफी का जायका काफी कड़वा सा था, लेकिन सलीम ने उसे हलक से नीचे उतार लिया। कॉफी पीकर उसे यकीनन राहत मिली।
पिस्टल और गोलियां तो रख ली है ना, उसकी जरूरत पड़ सकती है।
यस बॉस, सलीम ने आवाज में जोश पैदा करते हुए कहा। दोनों ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। लॉन के पास गोस्ट खड़ी थी। सोहराब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सलीम बगल की सीट पर। गोस्ट तेजी से आगे बढ़ रही थी। सलीम ने जेब से पाइप निकाल लिया और वैन गॉग का तंबाकू उसमें भरने लगा। पाइप सुलगाने के बाद उसने सोहराब से पूछा, आपको कैसे पता चला कि श्रेया की जान को खतरा है?
मैं तुम्हारी तरह बेखबर नहीं रहता। तुमसे श्रेया पर नजर रखने को कहा था, लेकिन उसने तुम्हें उस दिन इग्नोर क्या कर दिया कि तुम दोबारा भूलकर भी उधर नहीं गए।
सोहराब की बात पर सलीम खामोश रह गया। यकीनन वो श्रेया की तरफ दोबारा नहीं गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद सलीम इंस्पेक्टर सोहराब को पेंटिंग के बारे में बताने लगा कि किस तरह वो इंस्पेक्टर मनीष को विक्रम के स्टूडियो में मिली थी। सोहराब ने पूरी बात सुनने के बाद कहा,
वो पेंटिंग नकली है।
आपको कैसे पता? सलीम ने पूछा।
मैं लाइब्रेरी में पेंटिंग देख चुका हूं।
हम सब तो असली है ना? साजन सलीम पाइप का एक गहरा कश लेते हुए बड़बड़ाया, पहले नकली शियाली से साबका पड़ा, अब नकली पेंटिंग से। गोस्ट रात के सन्नाटे को चीरती हुई भागी चली जा रही थी। शहर पीछे छूट गया था। अब ये सीधी सड़क शोलागढ़ की तरफ ही जाती थी। सोहराब ने गोस्ट की स्पीड बढ़ा दी थी। वो जल्द से जल्द शोलागढ़ पहुंचना चाहता था। मैंने शियाली की प्रॉपर्टी के बारे में भी पता किया था। कुछ देर की खामोशी के बाद साजन सलीम ने कहा,
क्या जानकारी मिली?
जवाब में साजन सलीम ने उसे एडवोकेट संदर्भ सिंह से मुलाकात और वहां से मिली डिटेल के बारे में बता दिया।
अपराधी बहुत शातिर है।
मैं आपकी बात नहीं समझा।
अभी वक्त नहीं है कुछ समझाने का।
उसने गोस्ट की स्पीड बढ़ा दी। सलीम स्पीडोमीटर की सुई देखकर सिहर उठा। सलीम ने सोहराब को कभी इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते नहीं देखा था। सोहराब ने शोलागढ़ तक का रास्ता आधे वक्त में पूरा कर लिया। उसने गोस्ट को सड़क के किनारे उतार दिया और बाईं तरफ जंगल के अंदर गाड़ी लेता चला गया। सोहराब ने कार की हेडलाइट्स भी बुझा दी थी। कार की रफ्तार काफी कम हो गई थी। कुछ देर बाद उसने कार को एक झाड़ी की आड़ में रोक दिया और कार से नीचे उतर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। सलीम भी कार से बाहर निकल आया। आधी रात गुजर चुकी थी। पूरा इलाका साए साए कर रहा था। झींगुर और सियार के अलावा किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तभी उनके करीब ही एक बड़ा सा उल्लू चीखा। उसकी आवाज से सलीम चौंक पड़ा। शायद उल्लू ने कोई शिकार देख लिया था। दोनों पूरी सतर्कता से पैदल ही चले जा रहे थे। सोहराब का हाथ कोट की जेब में था और उसने पिस्टल पर अपनी ग्रिप मजबूत कर रखी थी। जरूरत पड़ने पर वो अगले 2 सेकंड में फायर कर सकता था। रात की स्याही में उनके पैरों के नीचे पड़ने वाली सूखी पत्तियां चीख रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक इमारत नजर आने लगी। साथ ही कुछ आवाज भी आ रही थी। इतनी रात को यह कैसी आवाज है?
शूटिंग हो रही है,
सोहराब ने धीमी आवाज में कहा। कुछ देर बाद वो दोनों इमारत की चार दीवारी के सामने खड़े थे। ये इमारत का पिछला हिस्सा था। सोहराब ने सलीम से दीवार फांदने के लिए कहा। दोनों ही बड़ी फुर्ती से दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए। सलीम ने सोहराब की तरफ देखा, वो ये जानना चाहता था कि अब क्या करना है। सोहराब ने साथ लाए झोले से रेशम की एक डोरी निकाली। उसके एक सिरे में स्टील का छोटा सा एंकर बंधा हुआ था। सोहराब ने झोले से एक छोटी सी कमान और तीर भी निकाली। तीर के आगे के सिरे पर एंकर को फंसा दिया। तीर को कमान में लगाने के बाद सोहराब ने उसे छत की तरफ छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसने रेशम की डोर को खींचना शुरू किया। डोर खींचती चली आ रही थी। उसके बाद डोर तन गई, यानी एंकर किसी चीज में फंस गया था। सोहराब ने 3-4 बार पूरी ताकत से डोर को झटका दिया, लेकिन डोर टस से मस ना हुई। सोहराब ने धीमी आवाज में सलीम से दस्ताने पहनने को कहा। जब वो दस्ताने पहन चुका तो उसने उसके हाथों में डोरी थमाते हुए ऊपर चढ़ जाने को कहा। सलीम किसी कलाबाज की तरह बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ गया। उसके बाद सोहराब ने भी हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और डोरी थाम ली और तेजी से ऊपर पहुंच गया। सोहराब ने डोरी को ऊपर खींच लिया। ये इमारत की आखिरी मंजिल की छत थी। अब उन्हें आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो इमारत के अगले हिस्से से आ रही थी। सोहराब नीचे उतरने के लिए रास्ता तलाश करने लगा। उसने नीचे जाने का रास्ता खोज तो लिया, लेकिन वहां दरवाजा लगा हुआ था और वो दूसरी तरफ से बंद था। दोनों इमारत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ गए। आवाज उस तरफ से ही आ रही थी। सलीम ने एक मोखे से झांक कर नीचे देखा। सामने का सीन देखकर वो चौंक पड़ा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सामने लॉन में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और कैमरे के सामने श्रेयाली खड़ी थी। सोहराब भी सलीम के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसे फिल्म का डायरेक्टर शैलेश जी अलंकार कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे आश्चर्य हुआ। अचानक एक रोशनदान से उसे रोशनी आती हुई दिखी। कमरे की लाइट अभी ही जलाई गई थी, क्योंकि जब वो ऊपर आए थे तो वहां उजाला नहीं था। कुमार सोहराब रोशनदान के पास जाकर खड़ा हो गया और अंदर झांक कर देखा। ये एक बड़ा सा हॉल था। एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी। उसे कुर्सी से बांध दिया गया था। सामने एक आराम कुर्सी पर शैलेश जी अलंकार बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। सार्जेंट सलीम भी सोहराब के बगल में जाकर खड़ा हो गया और रोशनदान से नीचे झांकने लगा। ये मंजर देखने के बाद उसके तो होश ही फाख्ता हो गए। मरा मींजा सा नजर आने वाला शैलेश जी अलंकार का ये रूप देखकर वो आश्चर्य से भर गया। अंदर शैलेश कह रहा था,
हाँ तो मिस श्रेया, आपको हीरोइन बनना है फिल्म की, वरना आप अपना मुंह खोल देंगी, है ना?
शैलेश की इस बात का श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। शैलेश की इस बात पर श्रेया के चेहरे के भाव भी सोहराब और सलीम देख नहीं सके। उनकी तरफ श्रेया की पीठ थी।
पिछली बार तो आप दफन होने से रह गई थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगी। वो गड्ढा अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। आपको गड्ढे में दफन करने के बाद ऊपर एक पौधा लगा दिया जाएगा। फिर कोई नहीं जान पाएगा कि आपको जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
इस बार भी श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया।
हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं, अगर तुम हमें साफ साफ बता दो कि तुमने उस जासूस को क्या क्या बताया है।
मेरी बात का यकीन करो, मैंने उसे कुछ नहीं बताया।
हम कैसे मान लें? आखिर उन्हें इस बात का यकीन क्यों कर हुआ कि श्रेयाली जंगल में है और जिंदा है? तुमने ही उन्हें डुप्लीकेट के रहस्य के बारे में वाकिफ करवाया होगा।
मैंने कुछ नहीं बताया, मेरी बात का यकीन करो।
तुम्हारा वो जासूस वकील के पास कैसे पहुंचा? ये जानने के लिए कि श्रेयाली की प्रॉपर्टी का वारिस कौन है। वकील के बारे में उसे किसने बताया?
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती।
मुझे तो यही आश्चर्य है कि तुम जंगल से जिंदा कैसे लौट आई।
तभी हॉल का दरवाजा खुला और शैलेश जी अलंकार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आने वाले के पैर सोहराब को नजर आ रहे थे, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था।
अरे वक्त बर्बाद मत करो, इसे ठिकाने लगाओ और बाहर जाकर शूटिंग कंप्लीट करो,
आने वाले ने तेज आवाज में कहा।
कैप्टन किशन? उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर सोहरा बुदबुदाया।
अरे लेकिन ये पिस्तौल तो फिल्मी है।
शैलेश जी अलंकार विदूषकों की तरह हंसते हुए बोला,
अरे बेवकूफ, बाहर जाओ और इसकी लाश उठाने के लिए आदमी भेजो,
कैप्टन किशन ने चिंगाड़ते हुए कहा। वो चंद कदम चलते हुए अंदर आ गया था। अब वो सोहराब और सलीम को साफ नजर आ रहा था।
सॉरी बेबी, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका।
उसने अपनी कोट की जेब से छोटी सी पिस्टल निकालकर श्रेया की तरफ तानते हुए कहा,
कैप्टन किशन, अपनी पिस्टल नीचे फेंको, तुम मेरे निशाने पर हो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, भाग नहीं सकोगे।
इंस्पेक्टर सोहराब ने बुलंद आवाज में कहा। उसने अपनी माउजर निकालकर रोशनदान की सरिया पर टिका दी। सोहराब की चेतावनी देने के बावजूद उसने श्रेया पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद श्रेया कुर्सी समेत जमीन पर गिर पड़ी। कैप्टन किशन के फायर के बाद एक और फायर हुआ। ये गोली सोहराब ने चलाई थी। गोली कैप्टन किशन के दाहिने पैर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा।
अरे इंस्पेक्टर सोहराब, कैप्टन किशन शान से जिया है, शान से ही मरेगा।
ये कहने के साथ ही उसने अपनी पिस्टल कनपट्टी से सटाकर फायर कर दिया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली और वो वहीं धराशायी हो गया। सोहराब ने कोतवाली पुलिस को फोन करके तुरंत फोर्स भेजने के लिए कहा। इसके साथ ही वो और सार्जेंट सलीम रेशम की डोर से तेजी से नीचे उतरे। वो सबकी नजरें बचाते हुए उस हॉल में पहुंच गए जहां श्रेया और कैप्टन किशन पड़े हुए थे। ये वही कोठी थी जिसमें सोहराब और सलीम पहले भी आ चुके थे। इंस्पेक्टर सोहराब तेजी से श्रेया के पास पहुंचा। गोली उसके बाएं हाथ के शाने पर लगी थी। हालांकि कैप्टन किशन ने निशाना दिल का ही लगाया था। वो बेहोश थी। सोहराब ने रुमाल निकालकर उसके हाथ पर मजबूती से बांध दिया ताकि खून का बहाव रोका जा सके। उसके बाद कैप्टन किशन के पास पहुंचा। वो मर चुका था। गोली ने उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया था। सोहराब ने जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे को ढक दिया। इंस्पेक्टर सोहराब का चेहरा सपाट नजर आ रहा था। उस पर कोई भाव नहीं थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम और सोहराब दरवाजे की आड़ में हो गए और फिर झटके से दरवाजे को खोल दिया। शैलेश जी अलंकार चार आदमियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने कैप्टन किशन की लाश देखी तो एकदम से ठिठक कर खड़ा हो गया। तभी सोहराब सामने आ गया। उसके हाथ में अब भी माउजर थी। सलीम ने दरवाजा बंद कर दिया।
अपने हाथ ऊपर करो और सामने दीवार से सटकर खड़े हो जाओ। खबरदार कोई गलती की तो बिना चेतावनी के गोली मार दूंगा।
उसकी बात का तुरंत असर हुआ। पांचों सामने की दीवार पर सटकर खड़े हो गए। उनकी पीठ सोहराब की तरफ थी। तभी इंस्पेक्टर सोहराब के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कोतवाली इंस्पेक्टर का फोन था। वो पुलिस फोर्स लेकर आ गया था।
इन पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ,
सोहराब ने सलीम से कहा और बाहर निकल गया। कोतवाली इंचार्ज ने समझदारी दिखाई। वो कोठी के लॉन में दाखिल नहीं हुआ था, अब भी सड़क पर था। सोहराब तेजी से बाहर की तरफ चला गया। शूटिंग अभी भी जारी थी। बाहर निकलकर उसने इंस्पेक्टर को कुछ समझाया। इसके बाद उसे लेकर वापस हॉल में आ गया। उसके साथ कुछ पुलिस कांस्टेबल्स भी थे। दो कांस्टेबल्स ने श्रेया को उठा लिया और उसे लेकर तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। कोतवाली इंस्पेक्टर ने शैलेश के हाथों में हथकड़ी लगा दी। पुलिस फोर्स ने शूटिंग रुकवा दी और सभी को एक बड़े से हॉल में जमा कर लिया। इनमें शियाली की डुप्लीकेट भी शामिल थी।
शैलेश, उसके चारों साथी के साथ शियाली की डुप्लीकेट को कल सुबह तक राजधानी भेज दीजिएगा। ये सभी गिरफ्तारी में रहेंगे। बाकी लोगों के बयान दर्ज करने के साथ ही पता और फोन नंबर नोट करके छोड़ दीजिएगा। किसी को बेवजह परेशान मत कीजिएगा।
सोहराब ने हॉल से बाहर निकलते हुए कोतवाली इंचार्ज से कहा, ओके सर। इसके बाद सोहराब और सलीम पैदल ही अपनी कार की तरफ चल दिए। इस बार उन्होंने सड़क का रास्ता चुना था। सोहराब ने सलीम से गोस्ट को ड्राइव करने के लिए कहा और खुद बगल की सीट पर बैठ गया। उसने सिगार केस से सिगार निकाल लिया और उसका कोना तोड़ने लगा। वो काफी गंभीर मुद्रा में था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अपने किसी बहुत करीबी को दफना कर आ रहा हो। रास्ते में सार्जेंट सलीम ने उससे पूरी बात समझने के लिए उसे कई बार कुरेदा, लेकिन सोहराब ने टाल दिया। जब सलीम ने ज्यादा जिद की तो उसने कहा,
अभी कई जरूरी काम निपटाने हैं, जब रिपोर्ट तैयार होगी तो पढ़ लेना।
उसकी इस बात पर सर्जेंट सलीम ने विधवा औरतों की तरह रुआंसा मुंह बना लिया और खामोशी से कार ड्राइव करने लगा। इसके बाद रास्ते भर उसने कोई बात नहीं की। उसकी सदा से सुराब को काफी फायदा हुआ। दरअसल वो चाहता भी यही था कि सलीम खामोश रहे, ताकि वो इत्मीनान से पूरे केस पर अपना जहन दौड़ा सके। जब वो शहर पहुंचे तो सुबह होने में कुछ देर ही बाकी थी। सर्जेंट सलीम ने कार रोकी और नीचे उतर आया। सोराब भी बाहर आया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आप कहाँ जा रहे हैं?
कैप्टन किशन के घर और ऑफिस की तलाशी लेनी है,
सोराब ने कहा और कार आगे बढ़ा दी। सर्जेंट सलीम सीधे अपने बेडरूम में पहुंचा, जूते उतारे और बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो रहा था। सलीम को अगर सोहराब न जगाता तो वो जाने कब तक सोता रहता। दोपहर के 2 बज रहे थे।
बरखुरदार, ब्रेकफास्ट का वक्त तो गया, डाइनिंग हॉल में तुरंत आ जाओ, लंच करते हैं,
इंस्पेक्टर सोहराब ने बहुत प्यार से कहा। इतने प्यार से बात करेंगे तो बदहजमी हो जाएगी, जवाब में सोहराब ने उसकी गर्दन पकड़कर वॉशरूम में ढकेल दिया। इसके बाद वो बाहर निकल आया। वो डाइनिंग रूम में आकर अखबार पढ़ने लगा। अखबार में रात की घटना का कोई जिक्र नहीं था। इसकी वजह यह थी कि घटना आधी रात के बाद हुई थी। दूसरे सोहराब ने कोतवाली इंचार्ज से सुबह से पहले मीडिया से घटना का जिक्र करने से मना भी कर दिया था। दरअसल वो बिना किसी को पता चले अपनी बाकी की कार्यवाही को पूरा करना चाहता था। सर्जेंट सलीम के आते ही दोनों लंच करने लगे। मुंह में पहला लुकमा डालते ही सलीम ने कहा,
अब तो बता दीजिए कि क्या मामला है।
पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं।
सलीम को काफी बेचैनी हो रही थी पूरा मामला जानने के लिए। उसने खाने पर तेजी से हाथ साफ किया। खाना खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर सोहराब ने सिगार जला ली और हल्के हल्के कश लेने लगा। तौलिए से हाथ साफ करने के बाद सलीम ने कहा, अगर हुजूर का मूड बन गया हो तो बयान शुरू करें।
ओके बरखुरदार, जो भी फैक्ट सबूत और जानकारी मिली है उसे पूरे वाकये को तुम्हें दास्तान के रूप में ही सुनाता हूं, ताकि तुम्हारी समझ में आसानी से आ सके और तुम्हारी दिलचस्पी भी बनी रहे।
मैं बेकरार हूं, आप शुरू तो कीजिए।
यह दास्तान शुरू होती है वनराज नाम के शख्स से। ये शेयाली के पिता थे। वनराज जवानी के दिनों में ही जोगी बन गए थे। उन्होंने शोलागढ़ की पहाड़ियों, उसकी गुफाओं और जंगलों में अपनी जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार दिया था। उन्हें जड़ी बूटियों का काफी ज्ञान था। वनराज ने गौर किया कि मानसिक रोगों का सटीक इलाज नहीं है, ज्यादातर मामलों में बिजली के हल्के झटके और नींद की दवाइयां दी जाती हैं। वो इसका परफेक्ट इलाज जड़ी बूटियों से करना चाहते थे। वो जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ों की वादियों जंगलों में भटका करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गडेरिये की एक बेटी से हुई। वो अपनी भेड़ें चराने जंगल के किनारे चारागाह में आती थी। वनराज की उम्र उस वक्त 40 साल से कम नहीं थी, जबकि गडेरिये की बेटी उस समय 19-20 साल की थी। दोनों में आधी उम्र का फासला था, लेकिन इसके बावजूद जल्द ही दोनों के बीच प्रेम के अंकुर फूट गए और वनराज ने उसे शादी कर ली और गांव में ही रहने लगे।
नौकर कॉफी लेकर आ गया था। सलीम ने कॉफी बनाकर एक कप सोहराब को दिया और दूसरा अपने लिए बनाने लगा। फिर आगे क्या हुआ? सोहराब ने कॉफी का सिप लेने के बाद दास्तान शुरू की।
वनराज पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगे। जड़ी बूटियों पर उनका शोध अब भी जारी था। अब वो गांव वालों का इलाज करते थे। उनकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शेयाली की पैदाइश के 3 साल बाद ही उसकी मां चल बसी। वनराज अकेला रह गया। उसका ज्यादा वक्त जंगल और पहाड़ों की वादियों में गुजरने लगा। वो शेयाली को भी साथ ले जाया करते थे। इस बीच उन्होंने गांव के ही एक नौजवान को अपना सहयोगी बना लिया। वो उनका खाना पका दिया करता था और उनके शोध के समय शेयाली को भी संभालता था। जड़ी बूटियां तलाशने में वो वनराज की मदद भी करता था। मासूम शेयाली उसे चाचा कहती थी। शेयाली पास के स्कूल में पढ़ने जाने लगी, लेकिन अब भी उसका वक्त बाबा के साथ ही जंगल और वादियों में गुजरता था। वक्त गुजरता चला गया। शेयाली जवान और वनराज बूढ़े हो चले थे। शेयाली कुदरत के बीच पली बढ़ी थी, इससे उसमें नेचुरल ब्यूटी और जबरदस्त चार्म था। इस बीच शेयाली को फिल्मों का चस्का लग गया और वो टीवी पर घंटों फिल्में देखती। उसके बाबा का सहयोगी उससे कहता कि वो खुद भी फिल्म की हीरोइन बन सकती है। सहयोगी ने धीरे धीरे उसके मन में फिल्म अभिनेत्री बनने का जज्बा इस कदर भर दिया कि शयाली अपने सपनों में खोई रहने लगी। वनराज का सहयोगी ये सब कुछ साजिशन कर रहा था। उसने शयाली से कहा कि वो उसे हीरोइन बना सकता है, लेकिन ढेरों पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब शयाली पूछती कि इतने पैसे कहां से आएंगे, तो कहता अगर वो उसे बाबा के इलाज के फॉर्मूले वाली नोटबुक ला कर दे दे। वनराज अपनी नोटबुक हमेशा साथ रखते थे। शयाली के बाबा दिन भर शोध और मरीजों में खोए रहते। बिन मां की बच्ची शयाली के कच्चे मन का उस सहयोगी ने पूरा फायदा उठाया और एक दिन रात में वनराज की डायरी और शयाली को लेकर वो गांव से रफू चक्कर हो गया। जानते हो वो सहयोगी कौन था?
कैप्टन किशन,
सलीम ने प्रश्नात्मक लहजे में पूछा। सही समझे, ये सहयोगी कैप्टन किशन था।
लेकिन वो अपने नाम के आगे कैप्टन क्यों लगाता था? क्या वो फौज में था?
वो फौज में तो कभी नहीं रहा, लेकिन वो कैप्टन अपने नाम के आगे क्यों लगाता था ये बात तो किशन ही बता सकता था। हो सकता है ऐसा उसने अपनी पहचान बदलने के लिए किया हो।
लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम हुआ?
काफी साल पहले एक लोकल अखबार में वनराज का एक प्रोफाइल छपा था। उसमें उसके एक शोध का भी जिक्र था। इत्तेफाकन वो खबर मेरी नजरों से गुजरी थी। उसे मैंने लाइब्रेरी में ढूंढ निकाला। इसके अलावा शयाली के कमरे की तलाशी में मेरे हाथ उसकी डायरी लग गई। डायरी को उसने बहुत छुपा कर रखा था। वो बिला नागा उसमें लिखती थी। डायरी में उसने विक्रम खान के बारे में काफी कुछ लिखा था। इसके अलावा वनराज की वो नोटबुक भी मुझे कैप्टन किशन की तिजोरी से मिल गई। बाकी सवाल मैंने तहकीकात से हल कर लिए। चलो अब आगे सुनो कि कैसे सब कुछ तबाह होता गया। शयाली के घर छोड़कर चले जाने से वनराज को गहरा सदमा लगा और उसने खुदकुशी कर ली। किसी तरीके से कैप्टन किशन को ये जानकारी मिल गई। अब वो आजाद और बेखौफ था। उसने नोटबुक का गहराई से अध्ययन किया तो उसमें एक फॉर्मूला उसके काम का मिल गया। वनराज ने नोट लिखा था कि इसकी खुराक यदि ज्यादा हो जाए तो मरीज को नशा होने लगता है। कैप्टन किशन का खुराफाती दिमाग ये फॉर्मूला ले उड़ा। वो बूटी काफी सहजता से मिल जाती थी और इफरात थी। उसने नशे की गोलियां बनाकर देश भर में सप्लाई चालू कर दी, जिससे उसने करोड़ों रुपए कमाए। दुनिया को दिखाने के लिए वो जौहरी का काम करता है ताकि किसी को शक ना हो।
सोहराब ने अपनी सिगार दोबारा जलाई।
पैसों की बाढ़ आई तो शयाली ने मॉडलिंग शुरू कर दी। वो आलीशान पार्टियों का हिस्सा बनने लगी। ऐसी ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात विक्रम खान से हुई। विक्रम खान को शयाली में अपने लिए एक मॉडल नजर आई। उसने न्यूड मॉडलिंग के लिए शयाली को पहली ही मुलाकात में ऑफर किया। वो न्यूड मॉडलिंग के लिए शयाली को 50 लाख तक देने को तैयार था। उसके इस ऑफर को शयाली ने किसी भी कीमत पर मानने से इनकार कर दिया। विक्रम को बचपन में पिता का और शयाली को मां का प्यार नहीं मिला था। दोनों को बिल्लियों से बेहद लगाव था। तुम्हें मालूम है कि इंट्रोवर्ट लोगों को अक्सर बिल्लियों से खासा लगाव होता है।
मैं जानवरों का डॉक्टर थोड़ी ना हूं, सोहराब ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा।
हाँ तो मैं बता रहा था कि विक्रम को पिता का और शयाली को मां का प्यार बचपन में नहीं मिला। दोनों को बिल्लियों से लगाव था। ऐसी ही कुछ कॉमन वजहों ने दोनों को करीब ला दिया। इस बीच कैप्टन किशन ने शयाली की सालगिरह पर उसके लिए फिल्म शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर का ऐलान किया और शुभ मुहूर्त पर एक बंगला भी गिफ्ट किया। शयाली वहां रहने चली गई और विक्रम भी कुछ दिनों बाद होटल छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने लगा।
विक्रम का क्या रोल था इस पूरे मामले में?
बहुत अजीब केस है। इसमें हर किरदार की एक अलग कहानी है, वो अलग से बताऊंगा। मैं बता चुका हूं कि कैप्टन किशन को भी जड़ी बूटियों की समझ थी। इस बीच उसने वनराज के फॉर्मूले से कुछ छेड़छाड़ करके एक नया पाउडर बना लिया। उसे खाने के बाद इंसान का दिमाग भ्रमित हो जाता था। इस पाउडर को उसने अपने एक आदमी से रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के खाने में मिलवाया। इसके बाद उसका असर देखा। उसने ये फॉर्मूला भी परफेक्टली बना डाला था। रेस्टोरेंट में वेटर बनकर ये अपराध करने वाला वो बदमाश मेरे हत्थे तो चढ़ गया, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि इसके पीछे कौन है। जब राजधानी में एक जैसी कई घटनाएं हुई तो खुफिया विभाग को इसकी तहकीकात करनी पड़ी।
सोहराब ने अपने लिए दूसरी कॉफी बनाई और आगे बताना शुरू किया।
इस बीच विक्रम के सुझाव पर शियाली ने खास ऐप डिजाइन करवाया। ये ऐप सिर्फ वुमेन के लिए था। इसमें लड़कियां और महिलाएं अपने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकती थीं। उधर फिल्म भी तकरीबन पूरी हो चुकी थी। कैप्टन किशन के मन में पैसों की भूख बढ़ती जा रही थी। इस बीच उसने खतरनाक फैसला लिया। वो फैसला था शियाली को रास्ते से हटा देने का। इसके लिए उसने ऐप की लॉन्चिंग पार्टी वाला दिन चुना। उसका प्लान था कि ऐप की लॉन्चिंग के दिन अगर शियाली की मौत होती है तो देखते ही देखते ऐप करोड़ों की डाउनलोडिंग पा लेगा। इसके अलावा वो शियाली की मौत का फायदा फिल्म को हिट करवाने में लेना चाहता था। इसके जरिए वो करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। उसने किसी तरह वो चूर्ण शियाली को भी खिला दिया। उससे भ्रमित होकर वो गहरे पानी में डूब गई।
कुछ देर की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा,
कैप्टन किशन अपने प्लान में कामयाब हो गया था, लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो गई, वरना वो कभी पकड़ा ना जाता।
कैसी गलती?
जब मुझे ये पता चला कि इस ऐप का प्लान विक्रम का था और खास लॉन्चिंग के दिन शियाली की रहस्यमय मौत हो गई है, तो मेरे शक की सुई विक्रम की तरफ गई। मैं उसे ही अपराधी मान रहा था। वैसे भी कैप्टन किशन ने शियाली के लिए बंगला गिफ्ट करने से लेकर फिल्म की लॉन्चिंग तक इतना कुछ कर रखा था कि उस पर शक करने का सवाल ही नहीं था।
सोहराब ने कॉफी के कुछ सिप लिए और आगे बताना शुरू किया।
बाकी हुई घटनाओं की तरह ही शियाली भी भ्रम के शिकार से गहरे पानी में डूब गई। इस वजह से मैं इसे हादसा या खुदकुशी मानने को तैयार नहीं था। कैप्टन किशन ने सोचा था कि पुलिस इस मामले में कुछ दिन तफ्तीश करेगी और इसे महज हादसा मानते हुए केस को बंद कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उसे यह पता चला कि केस खुफिया विभाग के पास आ गया है, तो उसने एक नई चाल चली। ये चाल ही उसके लिए काल का गाल बन गई। उसने तुम्हारा और श्रेया का जब अपहरण करवाया, तो मैंने नदी किनारे मौकाए वारदात पर जाकर यह समझ लिया था कि तुम दोनों का कत्ल नहीं किया गया है, बल्कि अगवा किया गया है। हमेशा अगवा के पीछे एक मकसद होता है। मैं उस मकसद को समझने में लग गया। एक दिन की पूरी मेहनत के बाद ही तुम्हें जंगल में तलाश लिया गया। इसके बाद मैंने कैप्टन किशन के दो फर्जी जंगलियों का अपहरण करवा कर अपनी टीम के दो आदमी वहां फिट कर दिए। वो बाकायदा हर चार घंटे पर रिपोर्ट देने लगे। जल्द ही मुझे पता चल गया कि शियाली जिंदा हालत में है। मैंने फिल्म शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के कैमरामैन को विश्वास में लेकर शियाली की फिल्म के कुछ फुटेज हासिल किए, और मेरे दोनों आदमियों ने मुझे जंगल से नकली शियाली के फुटेज उपलब्ध करवा दिए। लैबोरेटरी की जांच से यह साबित हो गया कि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। कैप्टन किशन की चाल तो बड़ी शानदार थी, लेकिन यहीं से मेरा दिमाग उसकी तरफ घूम गया। उसने सोचा था कि तुम जंगल से लौटकर बताओगे कि शियाली जिंदा है, और फिर पुलिस उसकी तलाश में लग जाएगी और इस तरह केस खुफिया विभाग बंद कर देगा।
इतनी बात बताने के बाद सोहराब कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जैसे कुछ याद कर रहा हो। कुछ वक्फे के बाद उसने बात आगे बढ़ाई।
जब तुम्हारे लौट आने के बाद भी हमने ये ओपन नहीं किया कि शियाली जंगल में जिंदा है और सार्जेंट सलीम की उससे मुलाकात हुई है, तो वो काफी निराश हुआ। तुम्हारी जंगल से वापसी के बाद उस पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन वो बड़ा शातिर था। उसका हर कदम नपातुला होता था।
लेकिन उसने श्रेया की जान लेने की कोशिश क्यों की?
मेरा अनुमान यह है कि श्रेया ने किसी मौके पर शियाली की निजी डायरी पढ़ ली थी। वो कैप्टन किशन को ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उसे लेकर भी एक फिल्म बनाए, नहीं तो वो उसका राज फाश कर देगी। कैप्टन किशन ने शायद उसे ये कहकर शांत कर दिया कि शोलागढ़ फिल्म पूरी होने के बाद वो उसे बतौर लीड रोल लॉन्च करेगा। बहरहाल, जब हमने ये नहीं माना कि शियाली जिंदा है, तो कैप्टन किशन को लगा कि शायद बॉडी डबल वाली बात श्रेया ने तुम्हें बताई है, इसलिए वो आग बबूला हो गया और उसने कई बार श्रेया की जान लेने की कोशिश की।
कुछ देर की खामोशी के बाद सोहराब ने कहा,
अहम बात यह भी है कि शियाली की डुप्लीकेट को यह बताया गया था कि एक नए हीरो को लॉन्च करना है और तुम्हें जंगल में रहकर उसकी झिझक दूर करनी है। इसके लिए जंगल में उसे बाकायदा सीन समझाया जाता था। उससे ये भी कहा गया था कि हीरो यानी कि तुम्हें इसका पता नहीं चलना चाहिए। उस बेचारी को आखिर तक ये मालूम नहीं चला कि वो एक अपराध की भागीदार बनाई जा रही है। कैप्टन किशन ने इतनी एहतियात बरती थी कि कहीं शियाली की जायदाद हथियाने के लिए कत्ल का शक उस पर ना आने पाए, इसलिए उसने बंगला और उसकी बाकी दौलत लड़कियों के अनाथ आश्रम को दान कर दी। तमाम एहतियात और एक फूल प्रूफ प्लान बनाने के बावजूद कैप्टन किशन कानून की नजरों से बच नहीं सका। एक बात याद रखने की है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो बच नहीं सकता।
एक आखिरी सवाल, विक्रम खान ने खुदकुशी क्यों कर ली?
इसके पीछे भी कैप्टन किशन था।
मतलब?
हाशना के दादा बख्तावर खान ने पेरिस में वहां की एक मशहूर मॉडल से शादी की थी। बख्तावर खान का कुछ दिनों के बाद उस मॉडल से तलाक हो गया था। पेरिस से अपने मुल्क लौटते वक्त वो यादगार के तौर पर उस मॉडल की एक न्यूड पेंटिंग साथ लाए थे। बख्तावर खान की वापसी के बाद उस मॉडल को एक बेटा हुआ। मॉडल ने बेटे का नाम विक्रम के खान रखा। खान सरनेम उसने बख्तावर खान से लिया था। मां की मौत के बाद विक्रम अपने बाप की तलाश में पेरिस से यहां पहुंचा। इत्तेफाकन एक दिन हाशना ने अपने दादा के बक्से में एक न्यूड पेंटिंग देखी। उसने वो पेंटिंग विक्रम को दिखाई। विक्रम खान ने वो पेंटिंग अपने पास ही रख ली, जिसकी वजह से उसका हाशना से झगड़ा भी हुआ था।
ओह, तो ये मामला था उस पेंटिंग का।
उस मॉडल की कुछ 6 पेंटिंग पेरिस के एक मशहूर पेंटर ने बनाई थी। उस पेंटर ने मॉडल की 7वीं पेंटिंग न्यूड बनाई थी, जिसे बख्तावर अपने साथ ले आया था। इस 7वीं न्यूड पेंटिंग की तलाश पूरे यूरोप को है। इसकी कीमत 50 करोड़ तक आंकी जाने लगी। कैप्टन किशन को किसी तरह से यह पता चला कि वो पेंटिंग विक्रम खान के पास मौजूद है। शायद इस बात का जिक्र कभी शियाली ने ही किया हो। वो पेंटिंग विक्रम खान की माँ की थी और कोई भी बेटा अपनी माँ की नग्न पेंटिंग की नुमाइश पसंद नहीं करेगा। यही वजह थी कि विक्रम ने उस पेंटिंग को सबसे छुपा कर रखा था। कैप्टन किशन किसी भी कीमत पर वो पेंटिंग हासिल करने को बेकरार था। उसने वो पेंटिंग विक्रम के तहखाने से हासिल कर ली, क्योंकि उस तहखाने का राज शियाली और विक्रम के अलावा कैप्टन किशन को ही मालूम था। शियाली को खोने के बाद गहरे तक टूट चुके विक्रम के हाथों से जब उसकी माँ की न्यूड पेंटिंग भी चली गई, तो वो पूरी तरह बिखर गया और उसने मौत को गले लगा लिया।
क्या विक्रम कभी अपने पिता बख्तावर खान से मिल सका?
मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि इस बात का जिक्र ना तो हाशना ने किया ना बख्तावर ने। मेरे ख्याल से हाशना से अपनी माँ की पेंटिंग पाने के कुछ दिनों बाद ही शियाली का कत्ल हो गया और विक्रम इन्हीं सब में उलझ गया।
वो पेंटिंग किसके पास है?
वो पेंटिंग मैंने बहुत तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरे ख्याल से कैप्टन किशन ने पेंटिंग हासिल करने के बाद तुरंत ही उसे सरहद पार भेज दिया। उसने इस बार भी पुलिस को उलझाने के लिए नकली पेंटिंग विक्रम खान के स्टूडियो में प्लांट करवाई।
गॉड, एक इंसान ने पैसों की अंधी भूख में कई जिंदगियां तबाह कर दी। साजन सलीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया।